مرقس کی انجیل باب ایک۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسعیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے،
دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔
بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے،
خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔
یوحنا آیا اور بیابان میں بپتیسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتیسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتیسمہ لیا۔ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا،
میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔
اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فیل فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی،
تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔
اور فیل فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا،
وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔
اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا،
میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔
وہ فیل فور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فیل فور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فیل فور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فیل فور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، وہ یوں کہہ کر چلایا،
اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا خدوس ہے۔
یسوع نے اسے جھڑک کر کہا،
چپ رہے اور اس میں سے نکل جا۔
پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے،
یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔
وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔
اور فیل فور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فیل فور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فیل فور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा,
सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
उसने उनसे कहा,
आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं।
और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा,
अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है।
उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा,
मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा।
और फील फॉर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया, और उसने उसे ताकीद करके फील फॉर रुखसत किया और उससे कहा,
खबरदार किसी से कुछ न कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो।
लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिरा दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। मरकुस की इंजील बाप 2। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को चार आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक न आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा,
बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए।
मगर वहाँ बास फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे,
ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, गुनाह कौन मुआफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के।
और फील फॉर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा,
तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो, आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है।
उसने उस मफलूज से कहा,
मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा।
और वो उठा और फील फॉर चारपाई उठाकर उन सब के सामने से बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे,
हमने ऐसा कभी नहीं देखा।
वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा,
मेरे पीछे हो ले।
बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यो हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा। और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनेगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीहों ने उसे गुनेगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा,
ये तो महसूल लेने वालों और गुनेगारों के साथ खाता पीता है।
यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा,
तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔
اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا،
کیا سبب ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟
یسو نے ان سے کہا،
کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی، اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔
اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالے توڑنے لگے، اور فریسیوں نے اس سے کہا،
دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں۔
اس نے ان سے کہا،
کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی؟
اور اس نے ان سے کہا،
سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔
مرقس کی انجیل باب 3۔ اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا،
بیچ میں کھڑا ہو،
اور ان سے کہا،
سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟
وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا،
اپنا ہاتھ بڑھا۔
اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فیل فور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں، اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا، اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادومیا سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدا کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی۔ پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالے، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا، چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی،
تو خدا کا بیٹا ہے،
اور وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ وہ یہ ہیں شماؤں جس کا نام پترس رکھا، اور جبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوانرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلیپوس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شماؤن کا نامی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ وہ گھر میں آیا और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने यह सुना तो उसे पकड़ने को निकले,
क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है।
और फकीर जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे,
उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुओं को निकालता है।
वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा,
शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम न रह सकेगा, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता, जब तक वो पहले उस जोरावर को न बांध ले तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुद्स के हक में कुफ्र बके वो अब तक मुआफी न पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है।
क्योंकि वो कहते थे,
उसमें नापाक रूह है।
फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा,
देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं।
उसने उनको ये जवाब दिया,
कौन है मेरी माँ और मेरे भाई?
और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा,
देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है।
मरकुस की इंजील बाप 4। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा, और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा, और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही, और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी तालीम में उनसे कहा,
सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न होने के सबब से सूख गया, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया।
फिर उसने कहा,
जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले।
जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा,
तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम न करें, और सुनते हुए सुने और न समझें, ऐसा न हो कि वो रुजू लाएं और मुआफी पाएं।
फिर उसने उनसे कहा,
क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है, जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फील फॉर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है, और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फील फॉर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोजा है। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फॉर ठोकर खाते हैं, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना।
اور اس نے ان سے کہا،
کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانے یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔
پھر اس نے ان سے کہا،
خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔
اور اس نے کہا،
خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فیل فور دراتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔
پھر اس نے کہا،
ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔
اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا،
آؤ پار چلیں،
اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا،
اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟
اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا،
چپ رہے، تھم جا۔
بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا،
تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟
اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے،
یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟
مرقس کی انجیل باب 5۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فیل فور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا،
اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔
کیونکہ وہ اس سے کہتا تھا،
اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے نکلا۔
پھر اس نے اس سے پوچھا،
تیرا نام کیا ہے؟
اس نے اس سے کہا،
میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔
پھر اس نے اس کی بہت منت کی،
ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔
اور وہاں پہاڑ پر सुअरों का एक बड़ा गोल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा,
हमको उन सुअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों।
बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकल कर सुअरों में दाखिल हो गई और वो गोल जो कोई 2000 का था कलाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सुअरों का माजरा उनसे बयान किया और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी बल्कि उससे कहा,
अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया।
वो गया और दिकापुलिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताज्जुब करते थे। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स याइर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यह कहकर उसकी बहुत मिन्नत की,
मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे।
बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ क्योंकि वो कहती थी,
अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी।
और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा,
किसने मेरी पोशाक छुई?
उसके शागिर्दों ने उससे कहा,
तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ?
उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा,
बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे।
वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा,
तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है?
जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा,
खौफ न कर, फकत एतकाद रख।
फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं और अंदर जाकर उनसे कहा,
क्यों दिल मचाते हो रोते हो? लड़की मर नहीं गई, बल्कि सोती है।
वो उस पर हंसने लगे लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा,
तलीता कूमी,
जिसका तर्जुमा है,
ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ,
वो लड़की फिलफोर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। मरकुस की इंजील बाप 6। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्त का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे,
ये बातें इसमें कहां से आ गईं? और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई? और कैसे मौजिज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं?
क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसियस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं?
बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा,
नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता।
और वो कोई मौजिज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेएतकादी पर ताज्जुब किया, और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया, और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया,
रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ न लो, न रोटी न झोली न अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और दो कुर्ते न पहनो।
और उसने उनसे कहा,
जहां तुम किसी घर में दाखिल हो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना न हो, और जिस जगह के लोग तुमको कबूल न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते वक्त अपने तलुओं के गर्द झाड़ दो, ताकि उन पर गवाही हो।
और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और उसने कहा,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजिज़े जाहिर होते हैं।
मगर बाज़ कहते थे,
ये एलिया है,
और बाज़ ये के
नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है।
मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा,
यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है,
क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया, और अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाने में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था,
अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं।
बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा,
जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, है?
और उससे कसम खाई,
जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा।
और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा,
मैं क्या मांगू?
उसने कहा,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर।
वो फिलफोर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की,
मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे।
बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिलफोर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा, کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی، اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا،
تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو۔
اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی، بس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے، اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے،
یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ وہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔
اس نے ان سے جواب میں کہا،
تم ہی انہیں کھانے کو دو۔
انہوں نے اس سے کہا،
کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟
اس نے ان سے کہا،
تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں، جاؤ دیکھو۔
انہوں نے دریافت کر کے کہا،
5 اور 2 مچھلیاں۔
اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں، بس وہ 100 100 اور 50 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کچھ مچھلیوں سے بھی، اور جنہوں نے روٹیاں کھائیں وہ 5000 مرد تھے۔ اور فیل فور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیتسیدا کو چلے جائیں، جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فیل فور ان سے باتیں کی اور کہا،
خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مات۔
پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی، اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور وہ پار جا کر گنے سرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فیل فور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے، اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے، اور وہ خواہ گاؤں خواہ شہروں خواہ بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارا چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔
مرکس کی انجیل باب 7۔ پھر فریسی اور بعض فقیر اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر قائم رہنے کے سبب جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں नहीं खाते और बाजार से आकर जब तक गुस्ल न कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए बुजुर्गों से उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा,
क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं?
उसने उनसे कहा,
यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुव्वत की, जैसा कि लिखा है, ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो।
और उसने उनसे कहा,
तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातिल करते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बहुतेरे काम करते हो।
और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा,
तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले।
और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा,
क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजबले में निकल जाती है।
ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा,
जो कुछ आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मक्र, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं।
फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफेने की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा,
पहले लड़कों को सेर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।
उसने जवाब में कहा,
हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं।
उसने उससे कहा,
इस कलाम की खातिर जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है।
और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है, और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिक पुलिस की सरहदों में से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा,
इफ़्ता,
यानी
खुल जा,
और उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गिरह खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने निहायत ही हैरान होकर कहा,
जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है।
मरकुस की इंजील बाप 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा,
मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे, और बाज इनमें से दूर के हैं।
उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया,
इस बियाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको शेयर कर सके।
उसने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने कहा,
7।
फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी, और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। पस वो खाकर शेर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4,000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाके में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींच कर कहा,
इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान न दिया जाएगा।
और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया, और वो रोटी लेना भूल गए थे, और कश्ती में उनके पास 1 से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया,
खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से होशियार रहना।
वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे,
हमारे पास रोटी नहीं।
मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा,
तुम क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई?
उन्होंने उससे कहा,
12।
और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए?
उन्होंने उससे कहा,
7।
उसने उनसे कहा,
क्या तुम अब तक नहीं समझते?
फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा,
क्या तू कुछ देखता है?
उसने नजर उठाकर कहा,
मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त।
फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा,
इस गांव के अंदर कदम भी न रखना।
फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा,
लोग मुझे क्या कहते हैं?
उन्होंने जवाब दिया,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया, और बाज नबियों में से कोई।
उसने उनसे पूछा,
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?
पतरस ने जवाब में उससे कहा,
तू मसीह है।
फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए, और 3 दिन के बाद जी उठे और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा,
ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है।
फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा,
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे। क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा।
मरकुस की इंजील बाप 9। और उसने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ न देख लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे।
6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यहुन्ना को हमराह लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसे सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा,
रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए।
क्योंकि वो जानता ना था कि क्या जवाब दे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई,
ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो।
और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ फिर ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मानी है। फिर उन्होंने उससे ये पूछा,
फकी, क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है?
उसने उनसे कहा,
एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा कि उसके हक में लिखा हुआ है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया।
और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं, और फिलफौर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा,
तुम उनसे क्या बहस करते हो?
और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया,
आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, वो झाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कब भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैं तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके।
उसने जवाब में उनसे कहा,
ऐ बेएतिकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ।
बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा,
ये इसको कितनी मुद्दत से है?
उसने कहा,
बचपन से, और उसने अक्सर उसे आग में और अक्सर पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर।
यीशु ने उससे कहा,
क्या अगर तू कर सकता है। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है।
उस लड़के के बाप ने फिर फौर चिल्ला कर कहा,
मैं एतकाद रखता हूँ, तो मेरी बेतकादी का इलाज कर।
जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झड़प कर उससे कहा,
अरे गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल न हो।
वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा
वो मर गया।
मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा,
हम उसे क्यों ना निकाल सके।
उसने उनसे कहा,
ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती।
फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था,
इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा।
लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा,
तुम राह में क्या बहस करते थे।
वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा,
अगर कोई अव्वल होना चाहे तो सब में पिछला और सबका खादिम बने।
और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा,
जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है।
यूहन्ना ने उससे कहा,
अरे उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था।
लेकिन यीशु ने कहा,
उसे मना न करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजजा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है, और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र हरगिज न खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो।
मरकुस की इंजील बाब 10। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यर्दन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई, और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा,
क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे।
उसने उनसे जवाब में कहा,
मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है।
उन्होंने कहा,
मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाक नामा लिखकर छोड़ दे।
मगर यीशु ने उनसे कहा,
उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए यह हुक्म लिखा था, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे।
और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। उसने उनसे कहा,
जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है, और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है।
फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा,
बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज दाखिल न होगा।
फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा,
आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं?
यीशु ने उससे कहा,
तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर।
उसने उससे कहा,
आए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है।
यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा,
एक बात की तुझमें कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा,
दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है।
शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा,
बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो।
वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे,
फिर कौन नजात पा सकता है?
यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा,
ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है।
पतरस उससे कहने लगा,
देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं।
यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया हो, और अब इस जमाने में 100 गुना न पाए, घर और भाई और बहने और माए और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल।
और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थी।
देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, और वो उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा।
तब जब्दी के बेटों याकूब और यहुन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा,
आए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे दरखास्त करें तू हमारे लिए करे।
उसने उनसे कहा,
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं?
उन्होंने उससे कहा,
हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो?
उन्होंने उससे कहा,
हमसे हो सकता है।
यीशु ने उनसे कहा,
जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दहनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है।
और जब उन दसों ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा,
तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे।
और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा,
इब्ने दाऊद, यीशु, उस पर रहम कर।
और बहुतों ने उसे डांटा,
चुप रह,
मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया,
इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर।
यीशु ने खड़े होकर कहा,
उसे बुलाओ।
बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया,
खातिर जमा रख, उठ, तुझे बुलाता है।
वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा,
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
अंधे ने उससे कहा,
ऐ रबूनी, ये कि मैं पीना हो जाऊं।
यीशु ने उससे कहा,
जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया।
वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। मरकुस की इंजील बाब 11। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने शागिर्दों में से दो को भेजा और उनसे कहा,
अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बना हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फील फॉर उसे यही वापस भेज देगा।
बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे, मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा,
ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो?
उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए, और वो उस पर सवार हो गया, और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काटकर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे,
होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आला में बाला पर, होशाना।
और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाहिजा करके उन बारह के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें से कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा,
आइंदा कोई तुझसे कभी फल न खाए।
और उसके शागिर्दों ने सुना। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सन्नाटों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया और अपनी तालीम में उनसे कहा,
क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है।
और सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान होते थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा,
अरे रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है।
यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर मुआफ करे, और अगर तुम मुआफ न करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी मुआफ न करेगा।
वो फिर यरूशलेम में आए और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे,
तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे इख्तियार दिया कि इन कामों को करे।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से, मुझे जवाब दो।
वो आपस में सलाह करने लगे,
अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया, और अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे।
बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा,
हम नहीं जानते।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ।
मरकुस की इंजील बाब 12। फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा।
एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ इहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से ताकिस्तान के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और नौकर को भेजा, उन्होंने उसे भी कत्ल किया। फिर और बहुतेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था, उसने आखिर उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर डालें, मीरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और ताकिस्तान के बाहर फेंक दिया। अब ताकिस्तान का मालिक क्या करेगा, वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके ताकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है।
इस पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील उन्हीं पर कही। बस वो उसे छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हिरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं। और उन्होंने आकर उससे कहा,
अरे उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या न दें?
उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा,
तुम मुझे क्यों आजमाते हो, मेरे पास एक दीनार लाओ कि मैं देखूं।
वो ले आए। उसने उनसे कहा,
ये सूरत और नाम किसका है?
उन्होंने उससे कहा,
कैसर का।
यीशु ने उनसे कहा,
जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो।
वो इस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। फिर सदूकियों ने, जो कहते हैं कि कयामत है ही नहीं, उसके पास आकर उससे ये सवाल किया,
अरे उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। सात भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, दूसरे ने उसे कर लिया और बे औलाद मर गया, और इसी तरह तीसरे ने, यहाँ तक के सातों बे औलाद मर गए। सब के बाद वो औरत भी मर गई। कयामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सातों की बीवी बनी थी।
यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को? क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी न होगी बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। बस तुम बड़े गुमराह हो।
और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा,
सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है?
यीशु ने जवाब दिया,
अव्वल ये है, ऐ इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं।
फकीही ने उससे कहा,
उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है।
जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा,
तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं।
और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा,
फकीह क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? दाऊद ने खुद रूहुल कुद्स की हिदायत से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दहनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी न कर दूं। दाऊद तो आप उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा कहां से ठहरा?
और आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। फिर उसने अपनी तालीम में कहा,
फकीहों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और जियाफतों में सदर नशीनी चाहते हैं, और वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं, इन्हीं को ज्यादा सजा मिलेगी।
फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर दो दमड़ियां यानी एक धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔
مرقس کی انجیل باب 13۔ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا،
اے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔
یسو نے اس سے کہا،
تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے؟ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔
جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا،
ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟
یسو نے ان سے کہنا شروع کیا،
خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتےرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے، اس وقت جو یہودیاں میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے اترے نہ اندر جائے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا ناب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی، اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا۔ اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا دیکھو وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ لیکن تم خبردار رہو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے، مگر ان دنوں میں مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی، لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا ہوا ہے اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے، اور جو میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔
مرقس کی انجیل باب 14۔ دو دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، کیونکہ کہتے تھے
عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔
جب وہ بیتنیہ میں شماؤن کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایک عورت جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا، مگر باز اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے
یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔
اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسو نے کہا
اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دیکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔
پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے۔ عید فطیر کے پہلے دن، یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا
تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟
اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا
شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہی ہمارے لیے تیاری کرنا۔
پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسو نے کہا
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔
وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے
کیا میں ہوں؟
اس نے ان سے کہا
وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔
وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا
لو یہ میرا بدن ہے۔
پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا، اور ان سبوں نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا
یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔
پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یسو نے ان سے کہا
تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔
پترس نے اس سے کہا
گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔
یسو نے اس سے کہا
میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔
لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا
اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔
اسی طرح اور سب نے بھی کہا۔ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا
یہاں بیٹھے رہو जब तक मैं दुआ करूं।
और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा,
मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो।
और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा,
ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो।
फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा,
ऐ शमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है।
वो फिर चला गया और वो ही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा,
अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है।
वो ये कह ही रहा था कि फिलफौर यहूदा, जो उन बारह में से था, और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था,
जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना।
वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा,
आए रब्बी,
और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरफ पकड़ने निकले? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि नविश्ते पूरे हुए।
इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वो यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीह उसके यहाँ जमा हो गए, और पतरस फासिले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा, और सरदार काहिन और सब सदरे अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे मगर ना पाई, क्योंकि बहुतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी,
हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदिस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो।
लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा,
तू कुछ जवाब नहीं देता, तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं?
मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा,
क्या तू उस सितूदे का बेटा मसीह है?
यीशु ने कहा,
हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कादिरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे।
सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा,
अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये खूब तो सुना, तुम्हारी क्या राय है?
उन सब ने फतवा दिया,
वो कत्ल के लायक है।
तब उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे,
नबूवत की बातें सुना,
और प्यादों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने कब्जे में लिया। जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नजर की और कहने लगी,
तू भी उस नासरी यीशु के साथ था।
उसने इनकार किया और कहा,
मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है।
फिर वो बाहर ड्योढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी,
ये उनमें से है।
मगर उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा,
बेशक तू उनमें से है क्योंकि तू गलीली भी है।
मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा,
मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता।
और फिलफोर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई।
मुर्ग के दोबार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा।
और उस पर गौर करके वो रो पड़ा। मरकुस की इंजील बाब 15। और फिलफोर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदरे अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातूस के हवाले किया। और पिलातूस ने उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का बादशाह है?
उसने जवाब में उससे कहा,
तू खुद कहता है।
और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातूस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा,
तू कुछ जवाब नहीं देता, देख ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं।
यीशु ने फिर कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक के पिलातूस ने ताज्जुब किया और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बरब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी,
जो तेरा दस्तूर है हमारे लिए कर।
पिलातूस ने उन्हें ये जवाब दिया,
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं?
क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातूस उनकी खातिर बरब्बा ही को छोड़ दे। पिलातूस ने दोबारा उनसे कहा,
फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं?
वो फिर चिल्लाए,
उसे सलीब दे।
और पिलातूस ने उनसे कहा,
क्यों उसने क्या बुराई की है?
वो और भी चिल्लाए,
उसे सलीब दे।
पिलातूस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो परितुरियून कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। और वो उसके सिर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्टों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमाऊ नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा के उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकामे गुलगुता पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मय उसे देने लगे मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर के किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दहनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लानतान करते और कहते थे,
वाह मकदिस के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले सलीब पर से उतर कर अपने तहीं बचा।
इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्टे से कहते थे,
इसने औरों को बचाया, अपने तहीं नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं।
और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लानतान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया,
इलाही, इलाही, लबाश बख्तनी,
जिसका तर्जुमा है,
हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा,
देखो वो एलिया को बुलाता है।
और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा,
ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं।
फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यो दम देते हुए देखकर कहा,
बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था।
और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसियस की माँ मरियम और सलूमी थी। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब से एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा,
उसको मरे हुए देर हो गई।
जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी उसे रखा और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसियस की माँ मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। मरकुस की इंजील बाप 16। जब सप्त का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलूमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं,
हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा।
जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा,
ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पत्रस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा।
और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि वो डरती थी। हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीन न किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से दो को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन न किया। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा,
तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जबाने बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे।
गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा, और कलाम को उन मौजिज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन।